शहर की हो, जब चले शहर की हो।
नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र तिवारी
और मैं अंजलि जोशी,
आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर में। अंजलि, आज मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है।
वो क्या नरेंद्र?
अंजलि, हमारे बहुत से श्रोताओं ने धारावाहिक शहर की ओर की कहानी शुरू से नहीं सुनी।
तो
हमारे वो सभी श्रोता शहर की ओर की पूरी कहानी सुन सकते हैं, और वो भी एक ही एपिसोड में।
वो कैसे नरेंद्र?
ओफो अंजलि, तुम अभी भी नहीं समझी भाई, हमारा अगला एपिसोड यानी कि एपिसोड 36 रीकैप एपिसोड है, जिसमें आप शहर की ओर की पूरी कहानी एक साथ सुन पाएंगे।
नरेंद्र, ये तो हमारे श्रोताओं के लिए बहुत खुशी की बात है। दोस्तों, ये तो हुई हमारे 36वें एपिसोड की बात, तो अब आज का कार्यक्रम शुरू करें।
लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर इक्वल एक्सेस और फोर्ड फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से आइडियोसिंक मीडिया कंबाइन द्वारा सिर्फ आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है।
और अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर आप प्रवास से जुड़ी कोई और जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें अपना सवाल हमारे फोन नंबर 9197176782 पर SMS कर सकते हैं।
और अब आपको सुनवाते हैं धारावाहिक शहर की ओर की 35वीं कड़ी।
दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना चंदर अपनी ही गलतियों की वजह से परेशान है। गजेंद्र चंदर को समझाता है कि उसे अपनी गलतियों को मानना चाहिए, साथ ही मधु और कल्पना से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उधर गांव में मधु खुद को अकेला महसूस कर रही है। मीरा मधु से चंदर को फोन करने के लिए कहती है। मुंबई में राजेश की मुलाकात माया से होती है। राजेश माया से कविता के बारे में पूछता है। माया बताती है कि कविता मुंबई आ चुकी है, लेकिन उसकी तबीयत खराब है और वो उसके घर पर है। अब सुनते हैं आगे की कहानी।
क्या बात है प्रकाश, आज बहुत खुश लग रहा है, कोई खास बात है?
अरे खुश तो मैं हमेशा रहता हूँ। तू ये बता, मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है तेरे को?
अच्छा है।
अबे क्या अच्छा है, एकदम फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल शाहरुख की तरह।
मेरे शाहरुख खान, आईना इधर दे दे, मुझे भी देर हो रही है।
ओए चंदर, तुझे क्या हुआ आज, काम पर नहीं जाना क्या?
चंदर, अरे सुन भी रहा है, प्रकाश तुझी से बात कर रहा है।
ये क्या हुआ है आज इसको गजेंद्र, बिल्कुल देवदास बन के बैठा है।
पता नहीं यार, यार जल्दी तैयार हो जा, आज वो किटी पार्टी भी है, उसका स्पेशल ऑर्डर तैयार करना है, देर से पहुंचे ना तो बेकार में खरी खोटी सुननी पड़ेगी।
अरे सब ठीक तो है चंदर, कल रात को भी बड़ा देर से आया था।
हाँ यार सब ठीक है, बस आज काम पर आने का मन नहीं कर रहा।
प्रकाश तू चल, मैं इसे लेकर आता हूँ थोड़ी देर में।
ठीक है, मैं निकल रहा हूँ।
आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। अरे राजेश तुम?
हेलो माया।
हेलो, आओ ना अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो?
थैंक्स।
इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना?
आज ऑफिस की छुट्टी थी तो मैंने सोचा कविता से मिल लूं।
बहुत अच्छा किया, तुम बैठो, मैं कविता को बुला कर लाती हूँ। कविता, ओ कविता देखो ना कौन आया है।
अरे राजेश तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ?
माया ने बताया था।
माया? माया से तुम कब मिले?
क्योंकि मेरे जासूस तुम्हारे पल पल की खबर रखते।
ओ, अच्छा।
मगर कविता तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वापस बॉम्बे आ गई हो और तुम बीमार हो?
क्योंकि तुम्हारे जासूस तो मेरी खबर रखते ही है ना।
वैसे कविता मुझे बहुत बुरा लगा, थोड़ा घबरा भी गया था मैं।
अरे सॉरी बाबा सॉरी, वो दरअसल मैं वापस आते बीमार पड़ गई और माया मुझे यहाँ ले आई और तुम बेवजह परेशान हो जाते इसलिए तुम्हें नहीं बताया, गलती हो गई, आई एम सॉरी ना।
कविता तुम्हारी जिंदगी के हर सुख दुख को बांट लेना चाहता हूँ मैं, इसीलिए तो तुमसे प्यार किया है मैंने।
राजेश कहा ना, गलती हो गई, आई एम सॉरी, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस।
अब तबीयत कैसी है तुम्हारी?
अब ठीक हूँ, डॉक्टर ने कुछ दिन आराम करने के लिए कहा है बस।
अच्छा ये बताओ कविता, गांव में सब कैसे हैं और तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव तो किया ना?
गांव में सब ठीक है और मम्मी पापा ने भी मुझे माफ कर दिया। और हाँ, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी भी है।
खुशखबरी? और मेरे लिए?
हाँ, जल्दी ही मम्मी पापा बॉम्बे आने वाले हैं।
बॉम्बे आने वाले? लेकिन क्यों?
अरे बाबा तुमसे मिलने।
मतलब वो हमारी शादी के लिए मान गए?
वो तो तुमसे मिलने के बाद ही तय हो पाएगा।
फिर तो मुझे थोड़ा सा ना डरना चाहिए। क्या करूं जो उन्हें पूरी तरह से इम्प्रेस कर सकूं? कविता, मेरे तो ना हाथ पांव फूल रहे हैं, कहीं उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया तो।
बस बस बस, अब नाटक बंद करो हाँ, और शादी की तैयारियां शुरू करो।
वैसे कविता, एक बात कहूं, आज मैं बहुत खुश हूँ।
अब थोड़ी खुशी उनके आने तक बचा कर रखो और थोड़ी पोटली में बांध लो शादी के बाद के लिए।
ऐसा?
हाँ।
चंदर, अरे बताना बात क्या है, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है?
कुछ नहीं यार गज्जू, वो बस मन थोड़ा उदास है।
अरे तो आखिर बात क्या है, हुआ क्या है तुझे? गांव में सब ठीक है ना?
हाँ यार गज्जू, सब ठीक है, तू मेरी वजह से परेशान मत हो।
तो तू कुछ बता तो सही, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं।
यार दरअसल कल जब मधु का फोन आया था, वो फोन पर रोने लगी, कह रही थी उसे मेरी बहुत याद आती है और मेरे बिना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है यार, कुछ दिन की छुट्टी लेकर गाँव हुआ, उसे भी अच्छा लगेगा और तेरी भी उदासी दूर हो जाएगी।
नहीं गज्जू, बात इतनी सी नहीं है, मैं अब मधु से नजरे नहीं मिला पाऊंगा यार। कल सारी रात मैं खुद से एक ही सवाल पूछता रहा कि मैंने मधु को धोखा क्यों दिया। वो समझदार है, पढ़ी लिखी है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, और मैंने उसके साथ क्या किया, एक एक करके उसके सारे सपने तोड़ दिए, यहाँ तक कि मैंने उसके भरोसे को भी तोड़ दिया, धोखा दिया उसे। मैंने पीना शुरू कर दिया, दूसरी औरत में अपनी जिंदगी का सुकून तलाशने लगा। मैंने मधु के साथ ऐसा क्यों किया गज्जू, मैं क्या करूँ गज्जू, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा।
चंदर, तुझे तेरी गलती का एहसास होगा, ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि तेरी गलती छोटी थी, पर अभी भी सुधार हो सकता है। तू एक काम कर, एक मिनट रुक, ये ले ये पेपर और पेन, अभी मधु को चिट्ठी लिख, उसे सब कुछ सच सच बता दे।
लेकिन गज्जू।
चंदर, रिश्तों की बुनियाद सच पर होती है, और अगर तू ये सोचता है कि ये सब तू मधु से जिंदगी भर छुपा लेगा और तेरी खुशियां लौट आएंगी, तो ये गलत है। सच जानकर मधु तुझे माफ करे या ना करे, ये उसकी मर्जी है, मगर झूठ के भरोसे तू अपनी जिंदगी कभी खुशहाल नहीं कर पाएगा, और यही एक तरीका है तेरे दिल के बोझ हल्का करने का।
लेकिन।
लेकिन क्या
गज्जू, सब ठीक तो हो जाएगा ना?
कितनी अजीब बात है ना, हम गलतियां करते हैं और अपनी पत्नी से माफी की उम्मीद करते हैं। अच्छा एक बात बता, अगर तू उसकी जगह होता और वो तेरी जगह होती, तो क्या तू उसे माफ करता? मैं तो यही समझता हूँ कि सच बताना बहुत जरूरी, आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानता।
गज्जू, मुझे लगता है पहले मुझे मधु से फोन पर बात कर लेनी चाहिए।
ठीक है, जैसा तू ठीक समझे, लेकिन उसे सब कुछ सच सच बता जरूर देना।
हाँ, मैं अभी मधु से बात करके आता हूँ।
मीरा, ए मीरा।
जी माँ जी।
अरे हरिंदर की कुछ खबर आई क्या, या वो भी चंदर की तरह शहर जाकर बस गया है?
माँ जी कह तो रहे थे जैसे ही छुट्टी मिलेगी घर आएंगे।
कहकर तो जाते हैं कि शहर में काम करेंगे कमाएंगे, पर जब कुछ पैसा घर आए तब मैं मानू ना कि कुछ काम कर रहे हैं।
अरे माँ, क्या बड़बड़ा रही है?
अरे आप कब आए?
तब जब माँ मेरी तारीफ कर रही थी।
हाँ बेटा, मैं तेरे बारे में बात कर रही थी।
मैं जानता हूँ माँ, तेरी नाराजगी जायज है, अब तू चिंता मत कर, अब तेरा ये बेटा कमाने लगा है। और हाँ, मैं इस बार खाली हाथ नहीं लौटा हूँ।
सच?
ये ले 800 है, तनख्वाह नहीं है ये, वो अलग मिलेगी महीने पर।
अच्छा, लगता है माता रानी ने मेरी सुन ली। अरे मधु, ए मधु, जरा पानी ले आ, देख थका रहा है मेरा बच्चा शहर से।
मीरा, अगर एक कप गरम गरम चाय मिल जाए तो मजा आ जाए।
मैं अभी आपके लिए एक कप चाय बनाती हूँ।
माँ जी पानी।
अरे मुझे क्या दे रही है, अपने जेठ को देना।
जी लीजिए पानी।
देख मधु, कमा कर लाया है मेरा हरिंदर, चंदर की तरह नहीं, और उसका फोन आए तो कह देना उससे, अरे कुछ शर्म करे, और घर का थोड़ा भी ख्याल हो ना तो कुछ पैसे भेज दे।
रहने दे माँ, शहर में पैसा कमाना आसान नहीं है, चंदर जरूर किसी मुश्किल में होगा, और तू क्यों इस बेचारी को परेशान कर रही है, तू अंदर जा मधु।
अरे रुक, ये ले 800 रुपए, अभी के अभी गणेश को दिया राशन के, नाक में दम कर रखा था। अरे बेटे शहर गए हैं, हम कौन सा इनके पैसे लेकर भाग रहे हैं।
जी माँ जी।
अरे ये चंदर कुछ भेजता रहता तो गाँव वालों के ताने तो ना सुनने पड़ते, ऊपर से साहूकार का उधार भी अभी सर पर है, बहुत छूट दे दी मैंने चंदर को, सोचा था लड़के बड़े हो गए हैं कुछ कमाएंगे तो मेरा बुढ़ापा भी चैन से कट जाएगा।
भेज देगा माँ, वो भी पैसे भेज देगा, और वैसे भी मैं तो कमाने लगा हूँ ना, तू मधु को चंदर के लिए मत बोला कर।
अच्छा अच्छा, अब बुआरी की ज्यादा तरफदारी मत कर, अरे चार बोतल जूस बना लेती है तो हम परेशान नहीं करती
माँ।
अच्छा अच्छा अब जा मुंह हाथ धो ले और कुछ खा पी ले।
मधु तुम ऐसे रो मत।
तो क्या करूं मैं, आप ही बताइए, आपको पता ही है खुद को मैं कितना अकेला महसूस करती हूं।
मधु मैं भी तुम्हारे बिना इस बड़े शहर में अकेला ही हूं।
कितने महीने हुए आपसे ठीक से बात तक नहीं की, आप कुछ दिनों के लिए घर क्यों नहीं आ जाते?
मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन सभी बातें मैं फोन पर तो नहीं कर सकता ना। मैं जल्दी ही तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा, बस कुछ दिन और सब रखो, मैं जल्दी ही आऊंगा। मधु तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा तुम मेरी चिट्ठी का जवाब जरूर देना, और मैं वो तुम्हारी पढ़ाई के बारे में भी जानकारी भेज दूंगा।
जैसा आपको ठीक लगे।
यार मैं सोच रहा था कि इस बार तनख्वाह मिलते ही एक फोन खरीद लूं, फिर जब तेरा मन करे मुझे फोन कर लेना।
हाँ अच्छा है, पर अगर कुछ पैसे बचा कर चलेंगे तो अच्छा होगा, घर में पैसों की बहुत जरूरत है, और फिर साहूकार का कर्ज भी तो चुकाना है, पता नहीं वो कब आ धमके।
मधु तुम फिर शुरू हो गई, तुम्हें हर वक्त ऐसा क्यों लगता है कि मैं गलती कर रहा हूँ? कभी तो मुझे समझने की कोशिश किया करो।
अरे आप तो नाराज हो गए, मेरा मतलब वो नहीं था।
रहने दो मधु, तुम्हारे लिए मैं कल भी गलत था और आज भी गलत हूँ, मैं फोन रखता हूँ। पता नहीं मधु तुम मुझे कब समझोगी, पर शायद गलती तुम्हारी भी नहीं है, तुम भी अपनी जगह सही हो, साहूकार का पैसा चुकाना भी जरूरी है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे साहूकार का सारा कर्ज एक बारी में ही चुकता हो जाए, लेकिन क्या करूं मैं?
वैसे नरेन तुम्हें क्या लगता है, क्या मोबाइल खरीदना फिजूल खर्ची है?
अंजलि मेरे हिसाब से जरूरत के मुताबिक सही जगह पर पैसा खर्च करना फिजूल खर्ची कतई नहीं है, पर लोगों का इस बारे में क्या मानना है और वो कैसे खुद को फिजूल खर्ची करने से रोकते हैं, ये सुनते हैं उन्हीं से।
मेरी नज़र में फिजूल खर्चा ड्रिंक करना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, और बाहर होटल में खाना खाना, और बड़ी जैसे बड़ी बड़ी कंपनी उनके ब्रांडेड कपड़े पहनना, जो उसकी अननेसेसरी रिक्वायरमेंट हो वो मेरी नज़र में फिजूल खर्ची है। मैं अपने प्राइमरी अपने जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग अपने सैलरी है जो मुझको बजट है उसको लेके चलता हूँ। सबसे पहले जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है उसको लेके चलता हूँ, उसके बाद ही जो मेरे शौक होते हैं उनको मैं पूरा करता हूँ।
फिजूल खर्चे तो कई हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक अपनी जरूरतों को अगर इंसान बढ़ाता है तो फिजूल खर्चों की शुरुआत हो जाती है।
तो आप खुद को फिजूल खर्चा करने से कैसे रोकते हैं?
अपनी आवश्यकताओं को घटा देते हैं, इसलिए फिजूल खर्चे रुक जाते हैं।
फिजूल खर्च वह है जैसे कि बोतल में हम खाना खाते हैं, दोस्तों को भी खिलाते हैं, और बाहर की चीज़ें खरीद खरीद के खाते रहते हैं, ये सब फिजूल खर्चे हैं। इन फिजूल खर्चों को हम इस तरह रोक सकते हैं, जिस तरह कि हम होटलों में ना जाके अपने घर में खाएं, अपने दोस्तों को घर में बुलाकर पार्टी दे सकते हैं, और किसी से बात करनी है मोबाइल पे तो वो मतलब ज़रूरी हो तभी करें, फालतू में ना करें।
मेरे मुताबिक तो फिजूल खर्ची वो चीज़ है कि हम जब अपने पैसा उन चीज़ों पे खर्च करते हैं जो जनहित में नहीं है, या फिर जो चीज़ें हमें स्वयं को नुकसान पहुंचा रही हैं उनके ऊपर पैसा खर्च करना ही फिजूल खर्ची कहलाता है। और इसको रोकने के लिए हमें उन चीज़ों पर पैसा खर्च करना चाहिए जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, उपयोगी हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे वो चीज़ें जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, शराब, इन चीज़ों पर पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। इनके बजाय उन चीज़ों पर जो हमें प्रोटीन, जैसे आपके फल हो गए, सब्जियाँ हो गई, और ड्राई फ्रूट वगैरह जो चीज़ें हैं, तो इन पर खर्च करना चाहिए। तो इससे हम जो है फिजूल खर्ची को एक अच्छा मोड़ दे सकते हैं।
अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, कि कुदरत हंस पड़ेगी हो।
और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट कुछ विश्वास की तरफ।
दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे परिवार से जिन्होंने साहूकार से ऋण लिया और साहूकार ने उनको धोखा देकर ज्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश की।
तो क्या साहूकार अपनी बीमारी में कामयाब हो गया?
अब अगर सारी बात मैं ही बता दूंगा अंजलि, तो फिर हम उस परिवार से क्या जानेंगे। आइए बात करते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस परिस्थिति का मुकाबला किया।
मैं मेरा नाम सुरम सिंह है, ग्राम मेरा दिहोल गांव पड़ता है और जिला टिहरी गढ़वाल।
ये कम से कम 10 साल पहले की बात है। एक बार मैं जॉब में था तो मुझे पैसों की जरूरत आ पड़ी थी, तो उस समय एक मेरा दोस्त गगन है, राजीव नगर देहरादून में रहता है, तो उसका बिजनेस है, उसका पैसा पैसा ठीक है, तो मैंने उससे कहा है मुझे पैसों की जरूरत है तो 5,000 रुपये के लगभग दे दे। तो उसने कहा ले जाना है, तो मैं गया था देहरादून। अचानक वहाँ मेरा एक दोस्त ही मिल गया, तो साथ ही थे हम दोनों, तो उससे पैसे लेके आ गए थे। उसके बाद जब काम चल पड़े, मकान काम ख़त्म हो गया था, उसके बाद मैंने 2-3 महीने बाद जब पी पू मिल गई थी तो मैंने उसे वापस करने के लिए गया देहरादून। तो उसने कहा तो रहन दे यार, अभी तेरा कहीं कर्ज गुर्ज होगा दूसरे के पास हो, कैसे ले रखा तो उसको दे दे, तो मेरे बाद में दे रहे हैं, अपनी बात है। तो मैंने उसे चल मैंने कहा यार दे दें, सब पैसों की जरूरत थी मेरे उस समय, किसी को दे दी, मैंने दूसरे को दे दिया। उसके बाद मैंने 2 साल बाद फिर कहा उसे, मैंने कहा यार तेरे पैसे हो गए ले ले भाई। उसने मना कर दिया कि अब मुझे क्या मालूम था उसके दिमाग में क्या है क्या नहीं है। फिर वापस आया घर, फिर मैंने 4-5 साल हो गए थे, मैंने कहा यार पैसे ज़्यादा देर रखना ठीक नहीं है। उस समय मुझे वो मिला था, एडवांस मिले थे कहीं से, पैसे मिले थे, तो मैंने उसे सीधा जाके मैंने ले यार तेरे 5,000 रुपये, अब तो रहने दे बहुत साल हो गए। तो उसने कहा मेरे 5 नहीं थे 10,000 रुपये थे। मैंने कहा यार 5 थे तेरे में ब्याज लगा रखा दुगना। उसने कहा ना ना ब्याज नहीं है, मैंने 10 ही दिए थे तेरे को। मैंने बहुत बहस की उसके साथ, कई बहसबाजी हुई है। मैंने कहा यार इतनी दोस्ती में ऐसा क्यों कर रहा। उसने कहा नहीं जी मैंने 10 दिए थे, दोस्ती बात अलग पैसे अलग बात है। फिर उसे बहुत समझाया बुझाया, उसे नहीं माना वो। उसके बाद तब मैंने क्या किया, 5 साल बुलाए लोग अपने गांव से बुलाए, उसके वहां से हुआ जो शुक्र हुआ वो लड़का साथ में था जो अपने काम के लिए उस दिन, तो उस लड़के को बम्बई नौकरी करता था, उसकी 1 महीने बाद वो घर आया, तो उसे बोले यार चल उसके साथ चल, उसके वहाँ पैसे उसने 5,000 रुपये लिए, उसने कहा चल यार। तब उसके सामने जाके फिर मीटिंग वाटिंग करके तब जाके बड़ी मुश्किल से माना हो, तब 5,000 रुपये दिए उसे।
जागी है नदियां सारी और जागा जागा है सागर, जागो।
तो दोस्तों सुना आपने, अगर साहूकार आपको धोखा देने की कोशिश करता है तो आप भी टिहरी गढ़वाल के सुरम सिंह जी की तरह समझदारी से काम लें और खुद को धोखे से बचाएं।
अच्छा अंजलि एक बात बताओ।
हाँ पूछो।
जो लोग साहूकारों से ऋण लेते हैं उनके लिए कोई ऐसा उपाय है कि उस ऋण पर लगाए जाने वाले ब्याज का हिसाब किताब वो खुद कर सकें ताकि साहूकार उन्हें धोखा न दे सके?
नरेन वो क्या है ना, मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा सा कमजोर है। हाँ लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो ब्याज का हिसाब किताब रखने में बहुत ही आसान तरीका बता सकते हैं।
तो भाई कौन है वो इंसान, जल्दी बताओ, मैं अभी उन्हें बुला लाता हूँ।
नरेन वो और कोई नहीं अपने भैजी हैं।
भैजी? तो ठीक है बुलाते हैं भैजी को।
मैं हूँ भैया भाई सब, मुझसे करो सवाल, बात हो छोटी बड़ी हो या फिर हल देता हूँ निकाल, बात करता हूँ लाख पते की, पूछो कोई सवाल, क्योंकि मैं हूँ भैजी लाल, मैं हूँ भैजी लाल।
भैजी स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम में।
धन्यवाद नरेन, कहो भाई कैसे याद किया?
भैजी आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या लोग साहूकारों अथवा बैंकों से लिए जाने वाले ऋण पर लगाए जाने वाले ब्याज का सही हिसाब किताब खुद रख सकते हैं?
बिल्कुल रख सकते हैं अंजलि, वो भी बहुत ही आसान ढंग से।
तो भैजी बताइए ना, हमारे श्रोता ये जानने के लिए काफी उत्सुक हैं।
भाई देखो, ऋण चाहे बैंक से लो या फिर साहूकार से, उसका हिसाब किताब रखना हमारी खुद की भी तो जिम्मेदारी है।
अच्छा, मगर सभी को तो गणित नहीं आता ना भैजी, बहुत से लोग मेरी तरह गणित में कमजोर भी तो हो सकते हैं।
अंजलि निराश होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी होशियारी की जरूरत है। अब अगर बैंक अथवा साहूकार से ऋण के ब्याज में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो बताइए नुकसान किसका होता है?
नुकसान तो हमारा ही है भैजी।
बिल्कुल ठीक। देखिए आम तौर पर ब्याज की दर या तो हर 3 महीने में या 6 महीने में या सालाना गिनी जाती है। पहले तो ये पता करना जरूरी है कि किस तरह का ब्याज तय किया गया है। अब अगर ऋण पर ब्याज का हिसाब किताब रखने की बात है तो देखिए आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ।
जी भैजी।
मान लीजिए आपने 1,000 रुपए का ऋण लिया है, वो भी 10% सालाना ब्याज की दर पर। अब इसका क्या मतलब हुआ नरेन?
मतलब ये कि साल का 100 रुपए ब्याज।
अब अगर व्यक्ति 1 साल में उस ऋण को वापस करता है तो उसे असल 1,000 रुपए और ब्याज के 100 रुपए यानी कि कुल मिलाकर 1,100 रुपए वापस करने होंगे।
जी भाई जी।
और अगर व्यक्ति उस साल में पैसे वापस नहीं करता तो अगले साल के लिए 1,100 रुपए मूलधन हो जाएगा, जिस पर फिर से साल का 10% ब्याज लगेगा। और अब ब्याज कितना बनेगा अंजलि?
110 रुपए।
अरे वाह, तुम्हारा गणित तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो अब दूसरे साल के अंत में व्यक्ति को 1,100 रुपए और साथ में 110 रुपए,
यानी के 1,210 रुपए वापिस करने होंगे।
क्या बात है अंजलि। और अगर व्यक्ति दूसरे साल में भी पैसा वापस नहीं करता तो तीसरे साल 1,210 रुपए मूलधन और उस पर 10% ब्याज लग जाएगा।
यानी कि भैजी, हर साल का असल और ब्याज दोनों मिलाकर आने वाले साल का मूलधन बन जाता है
और उस पर ब्याज लगता है।
हाँ, तो है ना हिसाब रखना आसान। मगर ये याद रहे कि अगर भुगतान सही समय पर नहीं किया गया तो ब्याज की रकम बहुत जल्दी बढ़ती है। अच्छा होता है अगर हम आसान किस्तों में अपने ऋण की राशि को बांट लेते हैं और हर महीने एक निश्चित छोटी सी रकम का भुगतान करते रहते हैं।
बिल्कुल भैजी।
तो दोस्तों, अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि आप ऋण पर ब्याज की गणना खुद कैसे कर सकते हैं।
भैजी, हमारे श्रोताओं को ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है काम की बात का,
जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं पैसे भेजने के कुछ आसान और सुरक्षित तरीके। काम की
बात। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर डाक विभाग की एक ऐसी सेवा है जिसके जरिए आप अपना पैसा सुरक्षित ढंग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं।
इसमें व्यक्ति भेजे जाने वाले पैसे को एक छोटी सी फीस के साथ डाक घर में देता है और बदले में एक रसीद प्राप्त करता है। इस सुविधा का इस्तेमाल अधिकतर ग्रामीण इलाकों में किया जाता है जहां पर बैंक नहीं है।
और अंजलि, अब हम बात करते हैं पैसे भेजने की दूसरी और सबसे सुरक्षित सुविधा, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट की।
नरेन, डिमांड ड्राफ्ट आज के समय में पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का मुख्य साधन है
और इसे किसी भी बैंक से आसानी से बनवाया जा सकता है।
जिसे बनवाने के लिए व्यक्ति को बैंक का एक फॉर्म भरना होता है जिसमें उसे कुछ जरूरी जानकारियां देनी होती हैं,
जैसे प्राप्तकर्ता का नाम,
भेजने वाले का नाम,
भेजी जाने वाली रकम,
उस जगह का विवरण जहां पैसा भेजा जाना है,
भेजने वाला पैसे का बैंक को किस तरह से भुगतान करता है, नकद या फिर अपने डेबिट अकाउंट से, इसका विवरण देना भी जरूरी है।
और ये सारी जानकारियाँ एप्लीकेशन फॉर्म में भरने के बाद उस फॉर्म को चेक अथवा दिए जाने वाले कैश के साथ बैंक में दिया जाता है और बदले में बैंक एक डिमांड ड्राफ्ट बनाकर देता है जो बिल्कुल चेक की तरह ही दिखता है। और ड्राफ्ट को बनवाने के लिए बैंक को फीस के तौर पर छोटी सी रकम देनी होती है।
और अंजलि, तीसरा और अंतिम उपाय है पैसे को एक बैंक खाते से सीधा दूसरे व्यक्ति के खाते में जमा करवा देना।
ऐसी स्थिति में आप सीधा कैश या फिर उस व्यक्ति के नाम से चेक बनाकर पैसे को सीधा उसके खाते में जमा कर सकते हैं।
तो दोस्तों, ये थी कुछ सुविधाएं जो आपके पैसे को पहुंचा सकती हैं पूरी सुरक्षा के साथ आपके परिवार, रिश्तेदार या फिर दोस्तों के पास।
अगर आप इस संबंध में या किसी और विषय में किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें अपना सवाल हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं।
और इसके लिए हमारा नंबर है 9197176782223। और दोस्तों, अब समय हो चुका है आपकी चिट्ठी का, जो जिताने वाली है किसी एक विजेता को आज का इनाम। कौन है वो भाग्यशाली विजेता और क्या है उसका नाम, ये आपको मैं नहीं अंजलि बताएगी।
बिल्कुल, मैं ही बताऊंगी। और आज के हमारे भाग्यशाली विजेता हैं नारायण सिंह नेगी जी, जिन्होंने हमें रुद्रप्रयाग से चिट्ठी लिखी है। नारायण सिंह नेगी जी लिखते हैं कि 1988 में मैं दिल्ली गया और चाट की एक दुकान पर काम करने लगा। उस समय मुझे वहाँ मात्र 90 रुपए मासिक वेतन मिलता था तथा 3 रुपए खाने के अलग से मिलते थे, जिसमें गुजारा नहीं हुआ। 6 माह नौकरी करने के बाद घर आ गया। 1990 में सहारनपुर पेपर रिसर्च में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर लगा। वहाँ मुझे 900 रुपए वेतन मिलता था। वहाँ एक साल तक नौकरी की, लेकिन घर की हालत बिगड़ती चली गई। घर से पत्र आता था कि खर्चा नहीं है, मगर मैं क्या करता, परेशान था। जब एक साल बाद घर आया तो केवल गाड़ी का किराया ही मेरे पास था। घर वालों ने ये सोचकर कर्जा लेकर अपना गुजारा किया था कि मेरे वापस आने पर लोगों का पैसा लौटा देंगे, मगर मैं तो खाली हाथ आया था। तब से मैंने कसम खाई कि परदेश में नौकरी करनी ही व्यर्थ है। मैंने कमर कस ली और रिश्तेदारों से 5,000 रुपए लिए और बकरियां खरीद ली। साल भर में बकरियां 4 से 8 हो गईं। मैंने धीरे धीरे गांव वालों का और सभी रिश्तेदारों का कर्जा भी चुका दिया। आखिर में ये लिखते हैं नरेन के घर में उद्यम करने से ही फायदा है।
नारायण सिंह नेगी जी, आपकी चिट्ठी के लिए आपको मिलता है एक खूबसूरत सा ट्रैवल बैग। और दोस्तों, नारायण सिंह जी की तरह आप भी ऐसा ही आकर्षक इनाम जीत सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों को चिट्ठियों के जरिए हमें भेजते रहिए।
आप हमें अपनी चिट्ठियाँ इस पते पर भेज सकते हैं, कार्यक्रम जब चले शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
इसके अलावा आप हमें अपने प्रवास से जुड़े खट्टे मीठे अनुभव ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com।
और अब आपको सुनवाते हैं आज के संदेश।
मेरा नाम दलवीर अमोला है, मैं न्यू टिहरी के चंबा क्षेत्र में रहता हूँ। मैं जौनपुर से बिलोंग रखता हूँ और मेरा दोस्त प्रदीप पवार है, वो मोदी नगर दिल्ली में रहता है और वो BDS का कोर्स कर रहा है। मैं उसको बहुत याद करता हूँ और मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि वो मुझे कॉल याद करता रहे, मिस कॉल कुछ भी मैसेज भेजता रहे।
मेरा नाम सीता रावत है, मैं कोटगार का रहने वाला हूँ। मेरी माँ को नाम श्रीमती सुंदरी देवी, मेरे भाभी को नाम श्रीमती रोशनी देवी है, मणिकरण छोटे मणिकरण वाला है सौरों दर। हाँ भाभी, तुम जाएगी घर, आज सामान ले गई, सब सामान जाएगी घर के, कुछ अब चिन्ह सो फिर तुम सामान थे आखिर क्या करे आए तुम, मतलब सामान राशन पानी घर लिगा ली, चौ चाह फट गया ली कि नहीं फट गई। तब मैं भाभी अब 20-21 तारीख तक बोलू, तब तक तुम घर में रंग रूंग नहीं कर, तुम पूरे व्यापार भी ले गए दीपा मिस्त्री खजर में ले आए सामान सारे तुम, आज कुछ रंग उड़ू घर रखा लगी सब अपने घर ले गए। तब नोनू थे बोले आना घर गाँव फंड सारे करे नोनू में, तब मैं बोलू 2-4 दिन में बोलू।
जी, मेरा नाम पवन है और मैं चंबा का रहने वाला हूँ। आजकल तो जितनी भी आतंकवाद जो काफ़ी अपने पांव पसार रहा है देश में, तो उसके लिए मैं, मेरे जितने भी भाई लोग परदेश में रह रहे हैं उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास जो ये विपत्ति का समय है, इसमें अपना धैर्य बिल्कुल न खोएं और एकदम शांति और प्रेम से जो है इस समय माहौल को बनाए रखें। तो उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा,
जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन,
खो रहा चैनो अमन,
हाँ मुश्किलों में है वतन,
मुश्किलों में है वतन,
सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो।
तो दोस्तों, ये थे आज के संदेश। और अगर आप भी अपना कोई संदेश भेजना चाहते हैं तो आप हमें अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं।
नंबर है हमारा 9197176782।
दोस्तों, अगर आपके पास प्रवास से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी है तो आप उस जानकारी को हमारे कार्यक्रम के जरिए बाकी प्रवासी दोस्तों के साथ बांट सकते हैं।
साथ ही आप मिलजुल कर अपना एक प्रवासी क्लब तैयार कीजिए, और अगर आप पहले से ही किसी ऐसे प्रवासी क्लब के सदस्य हैं तो उसकी गतिविधियों की जानकारियां भी हमें चिट्ठियों के जरिए भेज दीजिए।
इसी के साथ हम अपने सहयोगियों हेवलवाणी चंबा, मंदाकिनी की आवाज भणज और दिल्ली और मुंबई के अपने सभी सामुदायिक संवाददाताओं का भी धन्यवाद करना चाहेंगे।
और हाँ दोस्तों, हमें अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों के साथ चिट्ठियां जरूर लिखते रहिएगा और ईमेल भी करते रहिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस और पता आप एक बार फिर से नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com, यानी shaherkior@gmail.com।
पता है कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
और अब वक्त आ गया है दोस्तों आपसे इजाजत लेने का,
लेकिन अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।
किन्ना सोना देश है मेरा देश।
देश है मेरा, देश है मेरा।